मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 10 फरवरी 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों इसी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने इसी साल सितंबर अक्टूबर में एकेडमी की होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन 3 साथियों के नाम हैं अभिषेक मौर्य जो जमुआ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, नीलू यादव आप गोरखपुर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और इंदल कुमार नई दिल्ली से हैं। तो अभिषेक नीलू और इंदल आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और साथ ही मैं एक बार फिर से औपचारिक रूप से स्वागत करता हूं अपने उन सभी नौजवान साथियों का जो अभी 28 फरवरी को एकेडमी की होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए आने की तैयारी में लगे हुए हैं। डेफिनेटली उन सब ने अपने अपने ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो भी संभव हो सका होगा अपने टिकट बुक करा ली होंगी आने की भी जाने की भी। जैसा कि मैं लगातार आप लोगों से अर्ज करता रहा हूं बीच बीच में बताता भी रहा हूं कि उन्होंने मानसिक रूप से भी अपने आप को तैयार कर लिया होगा, अपने अंदर वो भावना पैदा कर ली होगी कि 15 दिन हमें वहां जाकर के पूरे अनुशासन के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ और सच बात यह है कि पूरे समर्पण के साथ अपने उन समय का उपयोग करना है। हमें अपनी झोली को बहुत बड़ा बनाना है ताकि हम वहां से ज्यादा लेकर आ सकें। मैं अपने उन सभी नौजवान साथियों को जो अभी 18 दिन के बाद ही मेरे सामने मौजूद होंगे और मैं उनके सामने मौजूद होऊंगा ये अर्ज करना चाहूंगा कि दोस्तों पूरी तरह से मन बनाकर आइए। बहुत ही छोटा सा शब्द मैं कह रहा हूं, मन बनाकर आइए, क्योंकि ये मन, इस मन में इतनी अद्भुत शक्ति है। उसका एक छोटा सा प्रमाण शायद आप 15 दिनों में लेकर जाएं, आप ही देखेंगे कि आप किस रूप में यहां आए थे और अब आप किस रूप में यहां से लौट रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात कि केवल लौट ही नहीं रहे हैं बल्कि आगे आप किस रूप में ढलते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों यह होगा तब जब आप इसके लिए पूरे समर्पण भाव के साथ अपना मन बनाकर आएंगे। मित्रों इस मन में कितनी ताकत होती है, यह कितना विलक्षण है, आज मैंने अपने लाइफ मैनेजमेंट में इसी टॉपिक को चुना है और इस टॉपिक को चुनने का अवसर मुझे उपलब्ध कराया है कल के आईआर न्यूज ने और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की सबसे पहली खबर ने। मित्रों सबसे पहले तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसी खबर को अपने अखबार की पहली खबर बनाया है, हेडलाइन बनाई है जो सही मायने में कहीं न कहीं मनुष्य की जिजीविषा को व्यक्त करने वाली है। कहानी कुछ यूं है दोस्तों, कल के आकाशवाणी के समाचार में भी आपने सुना है और इससे पहले भी आपने खबर सुनी होगी कि 3 मई को सियाचिन में बर्फ गिरी थी। बर्फ उस तरह से नहीं गिरी थी, मतलब बर्फ की चट्टाने जिसको हम एवलांच कहते हैं, मैसिव एवलांच हुआ था जिसमें हमारे 10 नौजवान सैनिक वहां शहीद हो गए थे। खोज चलती रही लेकिन बाद में घोषणा कर दी गई कि अब वो जीवित नहीं बचे होंगे क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर भी था, आप इमेजिन करके देखिए, -45%। दोस्तों अभी ठंड के दिन है, हमारे यहां का टेम्परेचर जब 6-7 पहुंच जाता है, ये प्लस होता है 6-7, तो हालत खराब हो जाती है। न तो रजाई से बाहर निकलने का मन करता और न आग के अलाव से उठकर जाने का मन करता है। लदे रहते हैं हम स्वेटर से, कोट से, इनर से और दांत भी कटकटाते रहते हैं। और वहां टेम्परेचर था -45°C और इससे भी बड़ी बात ये कि जो हाइट थी वो थी 19,600 फीट। मैं आपको इसके माध्यम से थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ भी ले जा रहा हूं। 19,600 फीट, याद रखिए कि सामान्य तौर पर हम सब 1,500 की फीट की ऊंचाई पर रहते हैं सामान्य तौर पर, जो मसूरी है वो मोस्ट लगभग लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर है, जो नैनीताल है लगभग लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर है, जो पचमढ़ी है लगभग लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर है। ज्यादातर आप जो हमारे हिल स्टेशन हैं उनको 4000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर पाएंगे, उससे भी 3 गुना 4 गुना ऊंचाई 19600 फीट। वहां एवालांच हुआ, हमारे 10 सैनिक उसमें दब गए और आश्चर्य की बात है कि 6 दिनों के बाद उसमें एक सैनिक जीवित बच निकला, जीवित बच निकला। 6 दिनों के बाद दोस्तों, जो उस दौरान 30 से 50 डिग्री माइनस टेम्परेचर में रहा, 5 से 6 दिन के बीच वो उस बर्फ के अंदर दबा रहा और जीवित बाहर आ गया। दोस्तों निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत दिलासा देने वाली बात है। मैं आप सब की तरफ से, एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से, अपनी पत्नी और अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर उन्हें बिल्कुल स्वस्थ करें, ताकि वो हम सबको एक अपने उस समय की घटी हुई घटना को ही केवल ना बताएं, बल्कि हमारे सामने मनुष्य की जिजीविषा के जीवंत प्रतीक के रूप में मौजूद रहें और हम सबको बताएं कि जीवन क्या होता है, जिजीविषा क्या होती है, विल पावर क्या होता है, जीने की इच्छा किसे कहते हैं और किस तरह से व्यक्ति अपने अस्तित्व को अंतिम सांस तक बचाए रखने के लिए संघर्ष कर सकता है। मित्रों बाद में पता लगेगा कि उनका जीवन कैसे बचा, क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि वो एयर पॉकेट किसी तरह से उसमें ट्रैप्ड हो गए तो उनको सांस लेने की थोड़ी सी जगह मिल गई, इसलिए वो जीवित रह गए। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर सांस लेने की थोड़ी सी जगह मिल भी गई दोस्तों, लेकिन क्या -40-50 डिग्री सेंटीग्रेड जहां टेम्परेचर हो, अगर वहां सांस लेने को मिल भी जाए तो क्या आदमी जीवित रह सकता है? वहां ऐसी कौन सी सुविधा थी या कौन सा उनके पक्ष में वैसा माहौल था जो जीवित रहने में मदद कर सकता था? सारी की सारी विपरीत परिस्थितियां थी। कल्पना करके देखिए, थोड़ा सा इसे आप महसूस कीजिएगा। ये कहानी की तरह सुनने की बात नहीं है, अखबारों में केवल पढ़ लेने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि उनकी जगह पर, हनुमंतप्पा की जगह पर, हम खुद को थोड़ी देर के लिए रख कर देखें, तब पता लगेगा कि कितना अधिक अंतर संघर्ष से हमारा वो नौजवान वहां जूझा होगा, किस तरीके से हर क्षण केवल मरने की ही आशंकाओं से जूझ रहा होगा, लेकिन मृत्यु की उस आशंकाओं के बीच, मृत्यु के उस भयानक खौफनाक अंधकार के बीच, कहीं ना कहीं एक जीने की टिमटिमाती हुई एक छोटी सी लौ भी उनके अंदर मौजूद थी। और वो जो टिमटिमाती हुई लौ थी, उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा उसकी गर्मी थी कि उस गर्मी ने -40 डिग्री टेम्परेचर को कहीं ना कहीं +20 डिग्री टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया और वो अंत में जीवित बच निकले। दोस्तों इसे आप कई तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, कुछ इसे प्रकृति का करिश्मा मान सकते हैं, कुछ इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान सकते हैं, कुछ पूर्वजों की हमारी कृपा आशीर्वाद मान सकते हैं, कुछ पूर्व जन्म का फल भी मान सकते हैं, कुछ ये भी कह सकते हैं कि उनके भाग्य में या उनके परिवार के भाग्य में यही लिखा हुआ था। साइंस इसे अपने ढंग से एनालिसिस करेगा और मैं इनमें से किसी भी एनालिसिस करने नहीं जा रहा हूं। मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि इन सारे एनालिसिस के बावजूद, जो अपनी अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, थोड़े बहुत सही हो सकते हैं, लेकिन यह बात तो 100% सही होगी कि अगर किसी ने उनको बचाया है तो केवल उनके बचने की इच्छा ने। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बचने की इच्छा ने। क्या इस बचने की इच्छा को हम बनने की इच्छा से भी जोड़ सकते हैं? अगर बचने की इच्छा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकती है तो क्या बनने की इच्छा असफलताओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती? मित्रों सामान्य तौर पर जब आप इस तरह से कोई बात किसी से शेयर कीजिए तो उन्हें यकीन नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हाँ हाँ, कहने वाले तो बहुत कहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, जब खुद को करना पड़ता है तब पता चलता है। मित्रों डेफिनेटली पता तभी चलता है जब खुद को करना पड़ता है। सच बात है, पता तो तभी चलेगा, लेकिन वो सजा वाली पता नहीं है कि सजा कोई मिल रही है। डेफिनेटली जो उस दौर से गुजरा है उसी के पास उसका अनुभव है। मित्रों, अभी ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में मैंने आप लोगों के सामने चार तरह के एनर्जी की बात की थी, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। क्या आपको नहीं लगता कि उस दौर में जिस समय हनुमंथप्पा 20,000 फीट की ऊंचाई में -30 से -50 डिग्री टेम्परेचर के बीच बर्फ से दबा हुआ था, उस समय उसकी ये चारों एनर्जीज अपने क्लाइमेक्स पर काम कर रही होंगी, अपने चरम पर थी वो चारों के चारों एनर्जी, और उसने उन चारों एनर्जी ने मिलकर के अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था, या कह लीजिए कि उसके चारों तरफ, हनुमंथप्पा के चारों तरफ एक ऐसा घेरा तैयार कर दिया था कि प्रकृति का यह इतना विषम, इतना प्रतिकूल वातावरण भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। ये एनर्जी कहां से आई थी? ये एनर्जी उसने अपने अंदर से पैदा की थी, और मुझे लगता है दोस्तों कि आज इस एनर्जी के, इन चारों एनर्जी के जो बहुत अच्छे प्रतीक, जो जीवंत व्यक्ति हैं, वो हमारे सामने एक साइंटिस्ट हैं, स्टीफन हॉकिंग्स। आप लोग शायद उनके बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्लीज उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश कीजिए। आजकल नेट पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप स्टीफन हॉकिंग्स की जिंदगी को देखिए। जब जवानी के दौर में ही थे कि शरीर ने जवाब दे दिया और वो व्हीलचेयर पर आ गए, शरीर कुछ भी नहीं रहा, लेकिन वो आदमी आज दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर तो जरूर व्हीलचेयर में कैद हो गया है, लेकिन जो मेरी चेतना है वो ब्रह्मांड में सफर करती रहती है। किस ताकत ने, किस ऊर्जा ने उनके इस शारीरिक अशक्तता को इतनी बड़ी ताकत में बदल दिया, और फिर ताकत में ही नहीं बदल दिया, बल्कि वो ब्रह्मांड से पता नहीं समय टाइम के ऊपर क्या क्या खोज करके ला रही है, डार्क एनर्जी के बारे में क्या क्या खोज कर रही, ब्लैक होल के बारे में क्या क्या बातें कर रही है। वो जो चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड की सैर करके और नए नए तथ्य सामने ला रही है, वो कौन सी एनर्जी है? वो मेंटल एनर्जी नहीं है। मेंटल एनर्जी ने तो उनके शरीर को मजबूत बना दिया है, शरीर को उन्होंने एक तरीके से कह दिए कि लाचार कर दिया अपने सामने, अपने मेंटल एनर्जी के सामने, कि ठीक है शरीर तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरा दिमाग मेरे कमांड में है, मेरे इमोशंस मेरे कमांड में है, और मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी आत्मा, मेरा कॉन्शियस मेरे कमांड में है, ये तीनों तो मेरे कमांड में है, और तीनों के कमान को संभाल कर आज वो स्टीफन हॉकिंग्स पूरी दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बने हुए हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी केवल जिजीविषा की कमाल है? केवल जिजीविषा, जिसे हम अंग्रेजी में विल पावर कहते हैं। मित्रों, ये जो विल पावर है ये इतनी बड़ी चीज होती है, इतनी बड़ी चीज होती है, मैं आप को बता नहीं सकता। बताने के लिए हनुमंतैया की स्टोरी अभी आपके सामने है, इसे आप पढ़ सकते हैं, नेट पर भी जाकर के ढूंढ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर इनकी स्टोरी भी है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। मैं कोई कहानी किससे नहीं बता रहा हूं, मैं कोई अतीत की कोई घटना भी नहीं बता रहा हूं जिसमें कि लाग लपेट भी हो सकती है, ये तो कल की घटना है, और उसे आज आप पढ़ और देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हनुमंतैया बिल्कुल ठीक हो जाएं, ताकि हम उन्हें सुन भी सकें, उन्हें देख भी सकें, और वो जिजीविषा की कहानी हमें बताएं, ताकि वो विल पावर हम अपने अंदर भी पैदा कर सकें। मित्रों, जीवन की सफलताएं तो छोटी चीज है, कम से कम जीवन और मृत्यु के सामने तो बहुत छोटी सी चीज है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो विल पावर हमारे पास है तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डिजायर, नहीं बर्निंग डिजायर, जलती हुई इच्छाएं, लपलपाती हुई इच्छाएं, कुछ भी कर गुजरने की इच्छाएं, जीने की इच्छा। और आज मुझे लगता है कि हनुमंथप्पा हमारे सामने उसे जीने की इच्छा के सबसे बड़ी लपलपाती हुई मशाल है। उनकी इस जिजीविषा को हम सब प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अपने परिवार में लौटें, जिसे उनके परिवार वालों ने पुनर्जन्म का नाम दिया है, रीबर्थ कहा है, और सच में यह कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, अब मैं आता हूं एआईआर न्यूज पर, कल की एआईआर न्यूज के बारे में अब हम लोग कुछ बातें करेंगे। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली खबर थी वो आप लोगों ने सुनी, वो राज्यपालों के सम्मेलन पर थी और ये एक एनुअल फीचर है। हर साल लगभग एक साल दो साल में कोशिश होती है कि हर साल राष्ट्रपति भवन में ही ये सम्मेलन होता है और राष्ट्रपति जी देश के सभी राज्यपाल को बुलाते हैं, दो दिन का सम्मेलन होता है और राज्यपाल सब आपस में भी चर्चाएं करते हैं और राष्ट्रपति जी उन्हें संबोधित करते हैं। आपको मालूम है कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है और राज्यों में वे एक तरह से राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर हम कुछ बातों को हटा दें तो ऑलमोस्ट मैं शब्द जानबूझ करके कह रहा हूं कि ये बिल्कुल नहीं है, कोई कार्बन कॉपी नहीं है, बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं है, कि केंद्र में जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है एक संवैधानिक स्थिति में, लगभग वही भूमिका राज्यों में राज्यपाल की होती है, असेंबली को लेकर के और यहां संसद को लेकर के। नो डाउट कि राष्ट्रपति का पद तो खैर राज्यपालों की तुलना में बहुत बड़ा है और राष्ट्रपति तो स्वयं राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, इसलिए उस रूप में कोई तुलना नहीं है, लेकिन मैं एक समझने की दृष्टि से आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, जो सिविल सर्विस की तैयारी होती है और खासकर पिछले 3 सालों की तैयारी करने की टेक्निक में जो परिवर्तन आया है, मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को अब इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना इस रूप में पड़ेगा कि अब बने बनाए उत्तर आपको न तो पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलेंगे, न नोट्स में पढ़ने को मिलेंगे और न अखबारों में ही पढ़ने को मिलेंगे। अब वो दौर खत्म हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि इनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, न पत्रिकाओं के बिना काम चलेगा, न आपका अखबारों के बिना काम चलेगा, नोट्स के बिना भी काम नहीं चलेंगे, लेकिन वो नोट्स बने बनाए अगर आप लेंगे तो वो पता नहीं आपकी कितनी मदद करेंगे, कुछ सीमा तक वो मदद करेंगे, क्योंकि जब तक वो नोट्स बनाए गए हैं, जब तक बने हैं तब तक वो अपडेटेड हैं, लेकिन उसके बाद वो अपडेटेड नहीं है। हाँ, वहां तक वो आपके काम आएंगे, आपको उसे फिर आगे अपडेट करना पड़ेगा। जैसे राज्यपालों के सम्मेलन की बात आप न्यूज में आपने सुनी, आपने देखा कि राष्ट्रपति जी ने अपनी कुछ बातें रखी, उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को सुधारने में राज्यपाल मदद करें, फिर उन्होंने किसानों की बात कही कि किस तरह से सूखा पड़ रहा है और किसानों की स्थिति बहुत खराब है, फिर उन्होंने मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी वगैरह की बात कही, फिर आपदा प्रबंधन की बात कही, ये सारी बातें उन्होंने कही। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है और मुझे लगता है कि आना भी चाहिए कि इन सब चीजों से राज्यपाल का क्या लेना देना, क्योंकि इन सब चीजों से तो सच पूछिए तो राज्यों में मुख्यमंत्री का लेना देना है। अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे उसके लिए विधेयक लेकर के आए, चाहे उसके लिए कैबिनेट निर्णय ले, उसमें राज्यपाल का क्या लेना देना है। तो फिर राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में राज्यपालों से ये बात क्यों कही? राज्यपालों से तो वो ये वह बात कहते जो वो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, इसके ऊपर सोचिए, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। मित्रों, मैंने ये बात मैं जानबूझकर उस न्यूज से निकालकर आप लोगों के सामने रख रहा हूं, खासकर इसलिए क्योंकि अब बहुत जरूरी हो गया है कि स्पेशली जो जनरल स्टडीज के 4 पेपर हैं, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको उसमें नंबर स्कोर करने हैं तो वह तभी संभव हो सकेगा जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो, गतिशील हो, उसमें सोचने समझने की शक्ति हो, उसमें विश्लेषण करने की क्षमता हो, चीजों को गहराई में जाकर के देख सके और आगे पीछे की चीजों को मिला करके वो अपनी बात सामने रख सके। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप न्यूज सुने या न्यूज़पेपर्स की कोई क्लिपिंग्स पढ़ें तब केवल पढ़ करके उसे न छोड़ दें, जैसा कि अभी तक ज्यादातर स्टूडेंट्स करते रहते हैं, पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, पढ़ लिया जो बातें जरूरी लगी उन्हें नोट कर लिया और इसके बाद छोड़ दिया। अब यह बात अलग है कि वो नोट की हुई चीजों को वो कितना दोहरा पाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, दोहराते भी हैं कि नहीं दोहराते हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को यह डर भी लगता है कि ढेर सारी चीजें इकट्ठी हो गई और अगर हमने इतनी सारी चीजों को याद कर लिया तो वहां तो केवल 200 शब्दों में लिख करके आना है, फिर हम कैसे लिख कर आएंगे, ये भी संकट होता है उनके सामने और उससे वो जूझते रहते हैं। तो मित्रों, यहां जो मैं बात आपसे इस न्यूज आइटम के माध्यम से जो कहना चाह रहा हूं, या आप इसे तैयारी की टेक्निक की बात कह सकते हैं, वो ये कि जैसे आपने राज्यपाल की खबर सुनी और पूरी खबर सुन लीजिए, और सुनने के बाद एक दो क्वेश्चन आप उसमें से निकाल लीजिए, और एक दो क्वेश्चन निकालने के बाद फिर उन पर आप विचार कीजिए। प्लीज थोड़ी देर विचार करने के लिए निकालिए और इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि भाई राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों से, जो उस तरह से एग्जीक्यूटिव के हिस्से नहीं है, वो बेसिकली लेजिस्लेचर के हिस्से हैं, तो ये बात क्यों कह रहे हैं? राज्यपाल वहां जाकर के क्या कर सकेंगे, क्योंकि उनके हाथ में तो कोई अधिकार सीधे सीधे है नहीं। तो ऐसे में वो राज्यपालों से अपने संबोधन में ये क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आप लोग विचार कीजिए। मैं जानबूझकर यहां इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं मित्र, जानबूझकर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं अगर उत्तर दे दूंगा तो आपका दिमाग उसे समझ लेगा, सुन लेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी दौड़ है ओलंपिक, बैसाखियों के सहारे तो ओलंपिक दौड़ जीती नहीं जा सकती, उसमें तो आपको अपने ही पैरों को मजबूत बनाना पड़ेगा, आपको ही अपने दिमाग को इस लेवल पर लाना होगा कि वह चीजें जनरेट कर सके, वह चीजें गढ़ सके, बना सके। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी, केवल इसी मैं न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी आप दूसरी भी कोई जब महत्वपूर्ण न्यूज सुने और आपको लगता है कि इससे कुछ प्रश्न उभरते हैं, उपजते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस न्यूज को एक क्वेश्चन के फ्रेम में कन्वर्ट करके और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। हो सकता है कि उसी टॉपिक पर आपने अब तक कुछ नोट्स लिए हों, कुछ और चीजें बना रखी हों, और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी चीज है, आप उनको पढ़िए, और उनको पढ़ने के बाद फिर आप उनके आंसर सोचिए, और बेहतर होगा कि थोड़ी देर आंसर लिखने में भी लगा लीजिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए, तब आपकी परफेक्ट तैयारी होगी। मित्रों, धीरे धीरे अगर आप डेली आरडीओ को फॉलो करते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि नहीं, ये टॉपिक एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इस पूरे के पूरे आर्टिकल में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर ध्यान देता हूं, आप ऐसा महसूस करने लगेंगे। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि अब मेरे पास रोजाना कई मेल ऐसे आते हैं, क्योंकि तीन बैचेस एकेडमी के निकल चुके हैं और उनके मेल डेली आते हैं कि उन्होंने क्या इंप्रूव कर लिया है, किस तरह से एनालिटिकल पावर डेवलप हो गई है, किस तरह से अब वो इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट को समझने लगे हैं, किस तरह से वो अब अपने लिए चीजें छांटने लगे हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी आत्मसंतोष की बात है। मित्रों, जैसे कि आज आपको नॉलेज सेंटर में टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट मिलेगा, खासकर हेडली को लेकर के। कल हम लोगों ने हेडली के बारे में बात की थी और मैंने आप लोगों से बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर धीरे धीरे डेफिनेटली दबाव इसकी वजह से बढ़ेगा, और आज के एडिटोरियल कमेंट में आप देखेंगे कि यही बात लगभग लगभग उभर कर आ रही है कि किस तरह से अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा कि अब वो कोई इधर उधर की बात करे, और ये भारत के बहुत पक्ष में होगा, और सच पूछिए तो इनफैक्ट ये दोनों ही देशों के पक्ष में होगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि वो आतंकवाद इस तरीके से फैला करके कोई बड़ी प्रगति कर रहा है। उसकी अपनी आर्थिक स्थिति तो बहुत ही खराब है, माना जाता है कि वो एक तरह से अमेरिका के ऐड पर ही वो जीवित है, चल रहा है, अदरवाइज तो उसकी आंतरिक स्थिति काफी खराब है। न्यूज में भी आपने डेविड हेडली के बारे में सुना, और डेविड हेडली ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वो खुद पाकिस्तानी सेना के लिए काम करता था, और ये जो मुंबई में हमला हुआ है इसमें तीन एजेंसियां शामिल थीं, आईएसआई जो एक गुप्तचर संस्था है, जासूसी संस्था है, लश्कर ए तौबा जो आतंकवादी संगठन है, और उसने तीसरा जो नाम लिया वो पाकिस्तान की सेना का नाम लिया कि ये तीनों मिलकर के मुंबई हमले के लिए प्लान करते रहे, जिम्मेदारी मतलब ये तीनों जिम्मेदार हैं। और चौंकाने वाली बात उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले खुद हेडली कई बार भारत आ चुका था, दो बार और अटैक हो चुके थे, मतलब कोशिश की गई थी लेकिन वो सफल नहीं हुए थे, इस तरह की बातें उन्होंने बताई। मित्रों, जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मिलेंगी, खासकर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर के। जैसे उन्होंने कहा कि दो बार और इस तरह की कोशिशें की गई, तो सवाल यह पैदा होता है कि हमारी जो अपनी एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ न कुछ खामी है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाल करके बताया है। फिर वो इतनी बार भारत में आए, कई लोग आए भारत में आए और घूम करके चले गए, तो आते रहे तो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, उनको हम क्यों नहीं पकड़ पाए, हम इस बात का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाए। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो एक तरीके से हमें अपने इंटरनल सिक्योरिटी में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए इसके बारे में भी बताते हैं। को मालूम है कि जो समुद्री रास्ता है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है, वहां से दुनिया भर की स्मगलिंग भी होती है, वेपन्स वहीं से आते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग वहीं से होती है। तो क्या अब वो समय आ गया है जबकि इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उस पूरे के पूरे जो समुद्री मार्ग है उसको सील कर दिया जाए। तो इस तरीके से आपको इस एडिटोरियल कमेंट में इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में भी दो तीन बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि क्या किया जाना चाहिए। और आप सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए तो हमेशा इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है और कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं। मित्रों, अब जो तीसरी खबर थी वो तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, जो हनुमंतप्पा थे उनके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा और उसको राष्ट्रपति जी ने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। तो राष्ट्रपति जी की तो शुभकामनाएं पूरे देश की ओर से दी गई शुभकामनाएं हैं और उनकी बहादुरी का जो जज्बा है उसको उन्होंने सलाम भी किया है। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो अभी जीवित हैं और ये खुशी हमारी और अधिक बढ़ जाएगी यदि पूरी तरह से वो स्वस्थ होकर के हमारे सामने जिस दिन हाजिर होंगे। दोस्तों, एक दो छोटी छोटी और खबरें हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक खबर छोटी सी ही है, आपने सुनी है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने एक घोषणा की है कि आने वाले 15 वर्षों में जो सरकार है वो हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 1,30,000 करोड़ रुपए कमिंग 15 ईयर्स में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए। आपको ध्यान होगा कि खासकर जब से हमारी नई सरकार आई है तब से जो पूर्वोत्तर भारत है उसके बारे में विशेष रूप से, विकास के बारे में विशेष रूप से सोचा जा रहा है। सरकार ने इससे पहले भी कुछ घोषणाएं की हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको नोट कर लेना, इसके लिए पेजेस बना लेने चाहिए और जो भी इसके इसमें इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होते हैं वो आप नोट करते चले जाइए। तो ये चूंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट है तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके पास होना चाहिए। ये जो लेटेस्ट है मित्रों, ये सबसे बड़ी चुनौती है सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए और इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे मैंने अभी राज्यपालों के बारे में ही बात की, तो अगर आप राज्यपालों के क्राइसिस को लेकर के कुछ लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई एक प्रश्न आया है, तो आपको उसमें अरुणाचल प्रदेश में अभी जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वहां के राज्यपाल को लेकर के जो चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट भी किया, मतलब पक्ष में ही कमेंट किया, उनको न्यायिक अधिकार है राज्यपालों को, तो ये आपकी जानकारी में होने चाहिए। अगर आज से 20 साल पहले की कोई घटना जो आपने किताबों में पढ़ ली है या किसी नोट्स में पढ़ ली है, अगर आप उसको इसी तरह की घटना, इसी तरह के अधिकारों से संबंधित अगर आप मेंशन करेंगे तो परीक्षक बहुत आराम से समझ जाएगा कि आप किताब के टट्टू हैं, वास्तव में करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ नहीं है। तो रट्टू लोगों से बचने के लिए ही सच पूछे तो अब सिविल सर्विस ने अपने क्वेश्चन पेपर्स के स्वरूप को इस तरीके से बदला है, इसलिए बहुत जरूरी है कि अब आप लोगों को भी उसी तरीके से अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। और ये परिवर्तित आप अपने आप को कैसे कर सकेंगे सच पूछिए तो यहां जो 15 दिन की क्लासेस हैं उसमें यही केवल समझाने बताने की कोशिश होती है। मित्रों, एक जो अंतिम जो छोटी सी खबर थी वो मैं केवल, खबर उस रूप में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन केवल यह बताना चाहूंगा कि एक रेल, हमारी जो रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु जी और जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। एक कंपनी बनाई गई है, रेलवे की कंपनी है जिसमें केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, दोनों ने मिलकर के कंपनी बनाई है। कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड की थी कि इस तरीके के कंपनी बनाए जाने का प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। उसमें आपने एक बात सुनी कि वो जो कंपनी जो बनी है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार का 51% शेयर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का 49% होगा। आपके दिमाग में फिर आने चाहिए कि यार आधा आधा क्यों नहीं कर लिया, 50-50 कर लेते, उसमें क्या हर्ज है, 51 और 49 का चक्कर क्या है। जो फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच के जो स्टूडेंट हैं वो मुझे लगता है कि इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। सच पूछे तो इसका मतलब होता है कि उस कंपनी पर वास्तव में स्वामित्व किसका है, जिसके सबसे अधिक शेयर होंगे उसका स्वामित्व होता है। और एक उसी तरीके से जैसे पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर किसका बनेगा, जिसके पास आधे से अधिक सदस्यों की संख्या होगी जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, वो प्राइम मिनिस्टर, उनका कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ये लगभग लगभग उसी तरह की बात यहां भी है कि 50% से अधिक शेयर जिसके पास होंगे प्रोमिनेंट पोजिशन उसकी रहेगी। यहां 51 और 49 का ये मतलब है, खासकर इस तथ्य की ओर आपका ध्यान मुझे दिलाना था। दोस्तों अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर, वो आपको ऑलरेडी नॉलेज सेंटर में अवेलेबल कराए जा चुके हैं, उसके ऊपर मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि सिविल सर्विस की सफलता इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि आपके पास गिद्ध दृष्टि कैसी है। गिद्ध दृष्टि का मतलब है जो अपनी चीजों को बिल्कुल पहचान सके। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था जिसमें सरसों के जीएम फसलों के बारे में था, बीज जिसको अप्रूव नहीं किया गया। आप देख रहे हैं कि अब उस पर काफी एडिटोरियल कमेंट आ रहे हैं और आर्टिकल्स भी आपको आएंगे, आज आपको नॉलेज सेंटर में पढ़ने को मिलेंगे। एक इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल आर्टिकल है दोस्तों, वो खासकर शौचालयों को लेकर के, टॉयलेट्स को लेकर के है, और उसने बहुत अच्छी बात कही है कि भी जो टॉयलेट्स हैं ये भी तो राइट एक अधिकार बन सकता है। साउथ अफ्रीका के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां बहुत अद्भुत किस्म के फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें मकान भी फंडामेंटल राइट्स में, हेल्थ फंडामेंटल राइट्स में है, एनवायरमेंट अच्छा क्लीन एनवायरमेंट वहां के फंडामेंटल राइट्स में है, वाटर वहां के फंडामेंटल राइट्स में है। तो इस तरीके से एक दिमाग में बात आ सकती है कि क्या शौचालय भी फंडामेंटल राइट्स में हो सकता है। ये मैं केवल फूड फॉर थॉट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उस आर्टिकल को भी देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है भारत के लिए और स्वच्छता अभियान का भी ये हिस्सा है, तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो मित्रों अब मैं आता हूं ईमेल पर, बहुत से मेल आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उन सबके प्रति बहुत बहुत आभार। सुरेश उपाध्याय और प्रीति बंसोड़ ने अपने कुछ अनुभव लिखे हैं, खासकर जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में मैंने जो स्पिरिचुअल एनर्जी की जो मैंने बात कही थी, तो सुरेश और प्रीति इसके लिए सुरेखा उपाध्याय और प्रीति ने लिखे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेल लिखे। कुछ दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं, उसमें है कौशलेश कुमार दुबे चक्रधरपुर से, धवल परमार हिम्मतनगर गुजरात से, हिमांशु बंसल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, प्रेम राज मीना इम्फाल से, धर्मेंद्र अग्रवाल मथुरा से, नीतू चंडीगढ़ से, सुरेखा उपाध्याय मुंबई से, प्रशांत कुमार पटना से, प्रभात कुमार मेरठ से, संकेत महादिक थाने से, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, साहिल कृष्ण जम्मू से, भरत बलियान मयंक जोध मंडला मध्य प्रदेश से, अरुण चौधरी भरत गुप्ता रजिया इलाहाबाद से, लव कुमार बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, अभिषेक राजकोट से और रोहित कुमार शुक्ला, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से जो बेस्ट मेल जो मैं आज घोषित कर रहा हूं वो सुरेखा उपाध्याय जो मुंबई से हैं उनका मेल है, तो सुरेखा इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों इसी के साथ ही आज का ये डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।